थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
चाहूं मैं तुझको दिल से खुदा, संग तेरे गुजरे हर पल मेरा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का दास अपने वचन के द्वारा हमें आगाह कर रहा है, ताकि हम उन वचनों के द्वारा परमेश्वर की सत्यता को जाने, अपने मनों को फिराएं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं, ताकि आपके वचन को सुने। हमारी विनती है कि आप अपने प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को आपकी निकटता में लाने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप उन्हें विश्वास दें, उन्हें धैर्य दे, ताकि वे इस बात को समझने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। आज अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगाई और छुटकारा दे, आज के वचन पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जकरिया बंधुआई से स्वदेश लौटे इसराइलियों को परमेश्वर की शांति का वचन सुनाता है कि उन्हें वर्षा देगा और उनके खेत हरे भरे होंगे। गृह देवता कुछ नहीं कर सकते और भावी कहने वालों की बातें निराधार हैं। उनके पास अच्छा अगुआ नहीं है, परमेश्वर उनके दुष्ट अगुओं को नष्ट कर देगा। वह यहूदा के घराने को प्रतापी बनाएगा और मसीह का आगमन उसमें से होगा। उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। वे पराक्रमी और बैरियों पर जयवंत होंगे। तो आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और जकरिया नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें। जकरिया 10 उसके 5 पद में लिखा है, वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदेंगे। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मेरे प्रियो, यह महाक्लेश के अंधकारपूर्ण समय के बारे में है। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा और उन्हें महाक्लेश से पार होने की शक्ति देगा, क्योंकि उनके बाद प्रभु यीशु का आगमन होगा। प्रभु यीशु का इनकार करने के कारण उन्हें वर्षों से निराश रहना पड़ा है। मेरे प्रियो, सन 70 में रोमी तीतुस की सेना ने यरूशलेम की नगर पनाह को, शहर को और मंदिर को ध्वंस कर दिया था तथा यहूदियों को बंदी बनाकर संपूर्ण विश्व में तीतर वितर कर दिया था। कुछ विशिष्ट टीकाकारों के मतानुसार इसराइल स्वदेश में अस्थायी निवास नहीं कर रहा है। यह तो मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर के वचन की उचित व्याख्या के अनुसार वे एक बार फिर अपने देश से बाहर किए जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर उन्हें लौटा कर लाएगा। कहता है कि स्वदेश लाएगा। जब परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा तब उन्हें अरबों के साथ कोई समस्या नहीं होगी। उस समय वे वहां स्थायी रूप से वास करेंगे और संसार के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। जकरिया के पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर कहता है कि मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। यहूदा का घराना तो हम जानते ही हैं कि दक्षिणी राज्य है और यूसुफ का घराना उत्तरी राज्य है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण इसराइल भावी प्रभु राज में आनंद से पूर्ण विजय और आशीषों का आनंद लेंगे। अब एक प्रश्न है, परमेश्वर उन्हें पुराने नियम और नए नियम के मध्यकालीन समय में सुरक्षित क्यों रखे हुए था? इसका उत्तर है, मुझे उन पर दया आई है। जी हां, हम अपने आप से भी तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका और मेरा उद्धार क्यों हुआ है? क्या हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है? पौलुस तीतुस को लिखता है 3 अध्याय उसके 5 पद में कि हमारा उद्धार कर्मों से नहीं परमेश्वर की दया से हुआ है। जी हां, परमेश्वर दया का धनी है। मेरे लिए उसने अनंत दया दर्शाई है। उसकी दया ही के कारण उसने स्वदेश लौटे इसराइल के 12 गोत्रों की रक्षा की थी। हम पहले देख ही चुके हैं कि स्वदेश लौटने वालों में 12 गोत्र के सदस्य थे, क्योंकि वे बेतेल अर्थात उत्तरी राज्य से याजकों के पास यरूशलेम के मंदिर में आए थे। मलाकी के युग के बाद 400 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें कोई संदेश नहीं दिया था। उस अंतराल में यहूदियों ने हिटलर के सताव की अपेक्षा सबसे अधिक कष्ट उठाया था। परंतु हम दानियल और जकरिया की भविष्यवाणियों के आधार पर इस समय की घटनाओं का आंकलन कर सकते हैं। यहां तो हम देख ही रहे हैं। आगे लिखा है जकरिया उसके 10 अध्याय और 7 पद में, एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। अब आप यदि यह सोचते हैं कि 10 गोत्र विलोप हो गए हैं, तो यहां परमेश्वर उनमें से एक एप्रेम का उल्लेख कर रहा है। इसका अर्थ है कि एप्रेम का गोत्र वहां था। इसकी पुष्टि हेतु होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 पद को देखें, जहां परमेश्वर अति सहाद्रता के साथ, सहनशीलता के साथ कहता है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इसराइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? अर्थात परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है, वे विलोप नहीं हुए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि वे एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित हैं। यहाँ पर लिखा है, अप्रेमी लोग वीर के समान होंगे। इसराइल के इस मध्यकालीन युग के अभिलेख में हमें रोमांचक घटनाएं सुनने को मिलती है, और ये हमें सुनाते हैं कि उन्होंने सीरिया के आक्रमण का कैसे सामना किया। एंतियोकस एफिफनस ने उन्हें भयानक यातनाएं दी, परंतु वे टूटे नहीं। अप्रेमी लोग वीर के समान होंगे, उनका मन ऐसे आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। वह एक अत्यधिक कठिन समय था और वे अनेक बार परमेश्वर से दूर हुए, परंतु ऐसा समय भी था जब वे परमेश्वर में आनंद मनाते थे। मेरे प्रियो, इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति नहीं होता है, परंतु जब हम उसके करीब आते हैं हमारे जीवन में आनंद होता है। यही बात इसराइलियों के जीवन में भी हम देखते हैं। जकरियाह के पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। सन 70 में रोमी तीतुस द्वारा यरूशलेम के उजाड़े जाने के समय ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसराइल देश की जनसंख्या लगभग 1,20,00,000 थी। यह जनसंख्या उनकी आज की जनसंख्या से बहुत अधिक थी। परमेश्वर कहता है, मैं सीटी बजाकर उनको एकत्र करूंगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही पद में वह कहता है कि वे जाति जाति के लोगों के बीच बिखेरे जाएंगे। यद्यपि प्रभु यीशु के समय इसराइल की जनसंख्या बहुत अधिक थी, प्रभु यीशु ने उसके विनाश की भविष्यवाणी की थी। यीशु को सन 30 में क्रूस पर चढ़ाया गया था और सन 70 ही में यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था। इसराइली संपूर्ण रोमी साम्राज्य में तितर बितर हो गए थे। जकरयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में से मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। कहता है लौट आएंगे, कहां से? अपने देश में? जी नहीं, परमेश्वर के पास। आज जो यहूदा स्वदेश लौट आए हैं, जो यहूदी लोग वहां पर रह रहे हैं, वे परमेश्वर के निकट नहीं आए हैं। मैं उन विचारकों का समर्थन करता हूं जिनका कहना है कि यहूदी एक बार फिर तीतर बीतर होंगे। आज वहां यहूदी रहना नहीं चाहते हैं, वे उन्हीं देशों में लौट जाना चाहते हैं जहां से वे आए हैं। मेरे विचार में एक दिन ऐसा आएगा जब वे सब वहां से चले जाएंगे। जकरयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां वे समा ना सकेंगे। वह कहता है कि मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा। आज मिस्र देश में बहुत कम यहूदी हैं, अतः मेरे विचार में यह भविष्यवाणी भावी विस्थापन की है। वह आगे कहता है, गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर। यदि आप यहोशू की पुस्तक में इसराइल की सीमा देखें तो लबानोन इसराइल का ही एक भाग था। कुछ टीकाकारों के अनुसार बाइबल में व्यक्त शहद और दूध का स्थान लबानोन का दक्षिणी तटीय प्रदेश है, जो आज भी अत्यधिक समृद्ध एवं उपजाऊ प्रदेश है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब इसराइल के भेदिये वहां गए थे तब वहां संपूर्ण प्रदेश वर्षा का देश था और वहां पर्वतों पर घने जंगल थे और फलों की बहुतायत थी। कुछ वर्ष वर्षा ना हो तो कोई भी स्थान रेगिस्तान बन सकता है। अतः लबानोन इसराइल का ही एक भाग था। आज लबानोन इसराइल में नहीं है, परंतु भविष्य में वह क्षेत्र इसराइल के अधीन होगा। यदि किसी लेबानोन वासी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो वह बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा प्रभु राज में होगा और आप उस समय बहुत प्रसन्न होंगे। आगे हम जकरिया नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए कि यह भाषा मिस्र से इसराइल की चमत्कारी मुक्ति का बोध कराती है। इस समय परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाया है, परंतु जब वह भविष्य में उन्हें लौटा लाएगा तब वह और भी बड़ा चमत्कार होगा। यर्मिया लिखता है 23 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, इसलिए देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे, यहोवा जो हम इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि उनका भावी स्वदेश गमन एक ऐसा महान चमत्कार होगा जो मिस्र से उनकी मुक्ति को भुला देगा। मेरे विचार में तो भविष्यवाणी की सबसे अधिक विकृत व्याख्या भी नहीं कहेगी कि आज का इसराइल भविष्यवाणी की पूर्ति है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह एक दूरस्थ भविष्य की घटना है। मेरे प्रियो, यह मुझे और आपको इस बात से सचेत करता है, आगाह करता है, हमें शिक्षा देता है कि परमेश्वर के वचन अभी भविष्य में पूरी होगी। और यही कारण है कि जकरिया इसराइल के बारे में कहता है कि वह किस प्रकार से फिर से तीतर बीतर होगा और वापस अपने राज्य में आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों को इस बात का संदेश पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा निरंतर आपसे बातचीत करे, आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।
लिखा कब्र में